नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में G20 समिट के पहले सत्र को संबोधित किया, जिसमें इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्रोथ पर जोर दिया गया। अफ्रीका पहली बार G20 समिट का आयोजन कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्लोबल डेवलपमेंट पैरामीटर्स पर फिर से विचार करने और ऐसे ग्रोथ को प्रायोरिटी देने का समय है जो इंक्लूसिव और सस्टेनेबल दोनों ही हो। इस अवसर पर उन्होंने G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पांस टीम बनाने का प्रस्ताव भी रखा, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि हेल्थ इमरजेंसी और नेचुरल डिजास्टर के दौरान दुनिया तब और ज्यादा मजबूत होती है जब वो एक साथ मिलकर काम करती है। इसके अलावा श्री मोदी ने G20 देशों से ट्रेंड मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम बनाने की कोशिश का आह्वान किया जो किसी भी इमरजेंसी में तेजी से डिप्लॉयमेंट के लिए तैयार रह सके। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल ट्राइट के जी पटनायक ने आज राजभवन ईटानगर में राज्य में पीएम गतिशक्ति के कार्यान्वयन और उपयोग की समीक्षा की। राज्य के मुख्य सचिव मनीष कुमार गुप्ता, कमिश्नर प्लानिंग एवं अन्य अधिकारियों ने इनके एप्लीकेशन पर एक प्रेजेंटेशन भी प्रस्तुत किए। राज्यपाल ने इस बात पर जोर दिया है कि राज्य के हर विभाग को विकास परियोजनाओं की योजना और उन्हें पूरा करते समय पीएम गतिशक्ति रिपोजिटरी का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि यह प्लेटफॉर्म अपने इंटीग्रेटेड डेटा के साथ राज्य की स्मार्ट प्लानिंग करने, देरी से बचने और सभी स्केटर्स में बेहतर कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने की क्षमता में काफी बढ़ावा दे सकते हैं। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश के दाओ को ज्योग्राफिकल इंडेक्स यानी GI टैग प्राप्त हुआ है। दाओ एक पारंपरिक हाथ से बनी ब्लेड है जिसका इस्तेमाल सदियों से कई आदिवासी समुदाय द्वारा किया जा रहा है। ये राज्य की देसी कारीगरी को संरक्षित करने का एक बड़ी उपलब्धि है। साथ ही उन्होंने कहा है कि ये पहचान राज्य की पुरानी लोहार की परंपराओं की सांस्कृतिक एवं आर्थिक मूल्यों को भी दर्शाता है। ईस्ट सियांग उपायुक्त सोनालिका जीवानी ने ईस्ट सियांग जिला पुलिस द्वारा 5th IRBN पासीघाट के समन्वय में कल से जारकोंग में आयोजित ड्रग फ्री ईस्ट सियांग थीम के तहत सेलिब्रेटिंग पुलिस स्पोर्ट्स फेस्ट 2025 का उद्घाटन किया, जिसमें जिले के युवाओं एवं लोगों द्वारा बड़ी संख्या में हिस्सा लिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने युवाओं से एक हेल्दी और ड्रग फ्री समुदाय बनाने के लिए अपने जीवन में खेल गतिविधियों को शामिल करने की अपील की। ईस्ट सियांग SP पंकज लांबा ने कहा कि 2 दिन के स्पोर्ट्स फेस्ट में फुटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट और बैडमिंटन शामिल किए गए हैं, जिसमें वॉलीबॉल एवं बैडमिंटन में महिलाओं की अच्छी खासी भागीदारी देखी जा रही है। इस इवेंट का उद्देश्य एक्टिव कम्युनिटी एंगेजमेंट और स्पोर्ट्समैनशिप के जरिए युवाओं को जिले के एंटी ड्रग मुहिम से जोड़ना है। अपर सियांग उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त तालो जेरांग की अध्यक्षता में कल एक औपचारिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दामरो और कारको के मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तालोम तायंग एवं डॉक्टर योन परमे को अन्य मेडिकल अधिकारियों की मौजूदगी में अस्पतालों और स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड NABH सर्टिफिकेट प्रदान किए गए। यह प्रत्यायन पेशेंट केयर और सेफ्टी, क्लिनिकल केयर और इन्फेक्शन कंट्रोल, साफ सफाई, सही डॉक्यूमेंटेशन और लगातार क्वालिटी में सुधार के उनके शानदार परफॉर्मेंस के लिए दिया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने देश भर में नए श्रम संहिता लागू होने पर देश के श्रमिकों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनाए गए ये संहिता श्रम कानूनों के इतिहास में सबसे बड़ा सुधार है। श्री शाह ने कहा है कि ये संहिता श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी, सामाजिक सुरक्षा, महिला मजदूरों के लिए समान अवसर और असंगठित श्रमों को कानूनी पहचान की गारंटी देते हैं। उन्होंने कहा है कि ये संहिताएं श्रमिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाएंगे और दुनिया के लिए एक रोल मॉडल स्थापित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज की दुनिया को वैश्विक संघर्षों से निपटने के लिए एक नए संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की आवश्यकता है। श्री सिंह ने कल लखनऊ में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र इसराइल, हमास और यूक्रेन रूस जैसे वैश्विक संघर्षों तथा सुदान में सामने आने वाले मानवीय संकटों में की जाने वाली अधिक मजबूती भूमिका निभा सकता है। श्री सिंह ने कहा है कि इसका मतलब ये नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र में कोई कमी नहीं है, बल्कि ये वैश्विक राजनीति की जटिलताओं, शक्तिशाली देशों के प्रभावों और संस्थागत प्रक्रियाओं की धीमी गति का शिकार है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।